एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
तो आज हम एक ऐसी शख्सियत और उनकी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने सच में पीढ़ियों को प्रेरित किया है।
हाँ बिल्कुल।
किताब का नाम है अग्नि की उड़ान, यानी विंग्स ऑफ फायर, और लेखक हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
अरुण तिवारी जी के साथ मिलकर लिखी है उन्होंने ये किताब, 1999 में आई थी
जी।
और डॉक्टर कलाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम।
हाँ, उनका पूरा नाम। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति ही नहीं थे, मेरे ख्याल से वो एक शिक्षक थे, एक लेखक और सबसे बढ़कर एक ऐसा इंसान जिन्होंने आम भारतीय के सपनों को, कहना चाहिए कि पंख दिए।
सही कहा, मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति, ये नाम यूं ही नहीं मिले उन्हें।
बिल्कुल नहीं।
और उनकी कहानी रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना, ये अपने आप में कमाल है।
ये सिर्फ उनके जीवन की कहानी नहीं है, ये किताब मतलब भारत के आत्मविश्वास की कहानी है, उसकी जो तकनीकी उड़ान है उसकी कहानी है, और साथ ही एक व्यक्ति की आध्यात्मिक और बौद्धिक यात्रा भी।
हाँ, और यही बात मुझे सबसे खास लगती है कि कैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता, या कहें तर्क और आस्था, एक साथ चल सकते हैं।
बिल्कुल, ये किताब यही दिखाती है, और दिखाती है दृढ़ता, विनम्रता और हाँ, बड़े सपने देखने की हिम्मत।
साथ ही भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम्स की वो अंदरूनी कहानी भी है इसमें, है ना?
जी हाँ, और आज के समय में भी ये उतनी ही प्रासंगिक है। मतलब कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी कुछ असाधारण कर सकता है, ये आज भी प्रेरणा देता है।
तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, अग्नि की उड़ान में जो बताया गया है उसके हिसाब से।
हाँ,
किताब का पहला हिस्सा ओरिएंटेशन उनके शुरुआती सालों पर है। जन्म 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु, एक बहुत ही साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में।
उनके पिता जैनुलाब्दीन, वो नावों के मालिक थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जैसा किताब में बताया है, लेकिन समझ बहुत गहरी थी, ईमानदारी थी।
और माँ आशिया अम्मा
जी, बेहद दयालु और उदार। कलाम साहब ने खुद लिखा है कि उनके घर में जितने लोग खाना खाते थे उससे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग, ज़रूरतमंद लोग खाते थे। तो ये मूल्य उन्हें वहीं से मिले, बचपन से।
और वो माहौल भी रामेश्वरम का, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोस्त थे, उनके पिता और मंदिर के पुजारी के बीच गहरी दोस्ती थी, आध्यात्मिक चर्चाएं होती थीं।
हाँ, वो सांप्रदायिक सद्भाव, लगता है वहीं से उनके विचारों में वो खुलापन आया, वो सम्मान सभी के लिए।
ये तो है, बचपन में मुश्किलें भी थीं, आर्थिक तंगी।
हाँ, परिवार की मदद के लिए उन्हें अखबार भी बेचना पड़ा सुबह सुबह उठकर।
लेकिन उन्होंने इसे बोझ नहीं समझा, शायद यहीं से मेहनत की कद्र करना सीखा।
बिल्कुल, ये अनुभव उन्हें जमीन से जुड़े रखने में बहुत काम आए होंगे आगे चलकर।
और वो एक घटना जो अक्सर दोहराई जाती है, उनके विज्ञान की टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाली।
हाँ हाँ वो बहुत दिलचस्प है। क्लास में जब उड़ान के सिद्धांत समझ नहीं आ रहे थे बच्चों को,
तो वो सबको समुद्र तट पर ले गए।
हाँ, और वहाँ उड़ते हुए सीगल पक्षियों को दिखाकर समझाया कि देखो ये कैसे उड़ते हैं, पंखों का डिजाइन, हवा का दबाव, सब कुछ प्रैक्टिकल डेमो।
और उसी दिन कलाम के मन में वो चिंगारी जली, उड़ान भरने की, आसमान छूने की।
सही कहा, वो सिर्फ एक साइंस क्लास नहीं थी, वो एक तरह से जिंदगी की दिशा तय करने वाली प्रेरणा बन गई।
तो यहीं से आस्था, विनम्रता, कड़ी मेहनत, ज्ञान का सम्मान, ये सब उनके जीवन की नींव बने।
बिल्कुल, फिर आता है उनकी कहानी का अगला पड़ाव, शिक्षा, संघर्ष और एक तरह से उदय। क्रिएशन खंड में इसका जिक्र है।
स्कूली पढ़ाई रामेश्वरम और रामानुजपुरम में, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए।
हाँ, MIT, और वहाँ की फीस भरना आसान नहीं था।
उनकी बहन जोहरा जी ने अपने कंगन गिरवी रखे थे।
जी, ये त्याग कलाम साहब को हमेशा याद रहा, उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है। ये उनके लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, ये परिवार का भरोसा था, उनकी उम्मीदें थीं।
जाहिर है, इसने उनके इरादे को और मजबूत किया होगा।
बिल्कुल, MIT का एक और किस्सा है, वो एयरक्राफ्ट डिजाइन वाला।
हाँ, जब प्रोफेसर ने कहा था कि डिजाइन ठीक नहीं है और सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया था।
हाँ, वरना स्कॉलरशिप रुक जाती। सोचिए जरा,
सिर्फ 3 दिन? अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त प्रेशर रहा होगा।
हाँ, कहते हैं उन्होंने रात दिन एक कर दिया, खाना पीना भूल कर और काम पूरा किया। प्रोफेसर इतने खुश हुए कि उन्होंने कलाम को गले लगा लिया।
तो यहीं से उन्होंने सीखा कि कैसे दबाव में काम करना है, अपनी सीमाएं कैसे बढ़ानी हैं।
बिल्कुल। फिर पढ़ाई पूरी हुई और तब उनके सामने दो रास्ते थे।
एक तो उनका बचपन का सपना फाइटर पायलट बनना भारतीय वायुसेना में,
और दूसरा रक्षा मंत्रालय के DTDNP में वैज्ञानिक की नौकरी।
वो गए भी थे वायुसेना के इंटरव्यू के लिए देहरादून।
हाँ, प्रदर्शन भी अच्छा था, पर किस्मत, कुल 8 सीटें थीं और वो लिस्ट में 9वें नंबर पर रहे।
ओ, बस एक पायदान से चूक गए।
हाँ, पायलट बनने का सपना टूट गया। ये उनके लिए बहुत बहुत बड़ा झटका था। बहुत निराश हुए।
जाहिर है, बचपन का सपना टूटना।
वो इस निराशा में ऋषिकेश चले गए।
ऋषिकेश?
हाँ, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से।
अच्छा।
स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि जो हुआ उसे स्वीकार करो, शायद तुम्हारी नियति, तुम्हारा रास्ता कुछ और है। अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ो।
ये बातें उनके लिए मरहम की तरह रही होंगी इस वक्त।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था उनकी जिंदगी में। एक सपना टूटा, लेकिन शायद एक बड़े उद्देश्य का, एक बड़े मिशन का रास्ता खुल गया।
उन्होंने फिर वो वैज्ञानिक वाला पद स्वीकार कर लिया।
हाँ, और उनका व्यक्तिगत सपना अब देश की सेवा के एक राष्ट्रीय मिशन में तब्दील हो गया।
फिर किताब के अगले हिस्से आते हैं, प्रोपिचिएशन और कॉन्टेम्पलेशन। यहाँ उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों और उनके विचारों की बात होती है।
शुरुआत हुई DRDO से, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन।
उनका पहला प्रोजेक्ट था एक छोटा होवरक्राफ्ट बनाना, नंदी।
हाँ, नंदी, ये वो नाव होती है ना जो हवा के कुशन पर चलती है, जमीन और पानी दोनों पर।
जी, प्रोजेक्ट बहुत सफल तो नहीं रहा शायद।
हाँ, सीमित सफलता मिली, पर उन्हें सरकारी सिस्टम, नौकरशाही, इन सबको समझने का अनुभव मिला।
लेकिन असली उड़ान तो ISRO में शुरू हुई 1969 में।
हाँ, जब वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े और वहाँ उन्हें मिले डॉक्टर विक्रम साराभाई।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक?
बिल्कुल, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक। उन्होंने कलाम की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी।
SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया।
हाँ, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। सोचिए कितना बड़ा काम था ये। लक्ष्य था भारत को उन देशों में शामिल करना जो खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं।
और उस समय तो भारत के पास ना संसाधन थे, ना टेक्नोलॉजी,
कुछ खास नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी अलग थे। ये लक्ष्य सच में बहुत मुश्किल लगता था,
पर कलाम साहब ने कर दिखाया।
उन्होंने एक युवा जोशीली टीम बनाई। उनका लीडरशिप स्टाइल बड़ा अलग था। वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देते थे, वो टीम के साथ लैब में घंटों बैठे रहते थे, काम करते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे।
एक साझा सपना था शायद।
हाँ बिल्कुल, एक जुनून था। फिर आया वो दिन, 10 अगस्त 1979, SLV-3 का पहला प्रक्षेपण,
और वो
असफल रहा।
हाँ,
उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद रॉकेट कंट्रोल से बाहर हो गया और समुद्र में जा गिरा।
पूरी टीम के लिए ये बहुत बड़ा सदमा रहा होगा, सालों की मेहनत।
बिल्कुल, विनाशकारी क्षण था वो। लेकिन यहीं पर प्रोफेसर सतीश धवन, जो उस समय इसरो के चेयरमैन थे, उनकी लीडरशिप देखने लायक थी।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जिम्मेदारी खुद ले ली थी।
हाँ, उन्होंने कलाम और टीम को बचाया। कलाम साहब इसे लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक मानते थे कि असफलता लीडर सहे, सफलता का श्रेय टीम को दे।
ये बहुत बड़ी बात है।
और इसका असर देखिए, टीम टूटी नहीं बल्कि और मजबूती से जुड़ गए।
गलतियों का विश्लेषण किया गया होगा
बारीकी से, डिजाइन सुधारे गए, और ठीक एक साल बाद 18 जुलाई 1980
SLV-3 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी।
हाँ, और रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया।
भारत के लिए ऐतिहासिक पल, हम अपने दम पर सैटेलाइट भेजने वाले 6ठे देश बन गए।
और कलाम साहब रातों रात नेशनल हीरो बन गए। इस सफलता ने पूरे देश का आत्मविश्वास बढ़ाया।
इस कामयाबी के बाद 1982 में वो वापस DRDO आ गए।
जी, और इस बार एक और भी बड़ी जिम्मेदारी मिली, IGMDP, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम।
इसका लक्ष्य था मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना।
हाँ, देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी था।
और यहाँ भी उन्होंने कमाल किया, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग,
मिसाइलों की पूरी एक रेंज विकसित की, खासकर अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण, वो एक मील का पत्थर था।
उसने भारत की सामरिक क्षमता को दुनिया के सामने रखा।
बिल्कुल, और इसी के बाद डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ये नाम उनके साथ जुड़ गया।
किताब का ज्यादातर हिस्सा यहीं तक आता है, लगभग 1992 तक।
हाँ,
जब उन्हें भारत रत्न मिल चुका था।
हाँ, किताब में वो अपने मैनेजमेंट के तरीके, टीम को कैसे सशक्त बनाए और कैसे विज्ञान और तकनीक से देश का विकास हो, इन सब पर अपने विचार रखते हैं।
और वो इग्नाइटेड माइंड्स की बात करते हैं, प्रज्वलित मन, कि देश के युवा ही भारत को आगे ले जाएंगे।
हाँ, एक विकसित भारत का सपना। हालांकि किताब यहीं खत्म होती है, पर हम जानते हैं कि उनका सफर तो जारी रहा।
वो सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने
और फिर 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति।
इन सब उपलब्धियों के पीछे उनकी सोच क्या थी, उनके मूल्य? किताब में विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल पर बहुत जोर है। ये थोड़ा मतलब अनोखा लगता है ना, खासकर एक वैज्ञानिक के लिए।
हाँ, पर यही तो कलाम साहब की खासियत थी। वो मानते थे कि ये दोनों विरोधी नहीं हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों सत्य की खोज के रास्ते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू।
विज्ञान बताता है क्या है और आध्यात्मिकता क्यों है।
कुछ ऐसा ही। उनकी अपनी इस्लामी पृष्ठभूमि थी, लेकिन वो भगवद गीता भी उतनी ही श्रद्धा से पढ़ते थे, हर धर्म का सम्मान करते थे।
वो अक्सर अपनी कामयाबी का श्रेय किसी ऊंची शक्ति, किसी दैवीय शक्ति को देते थे।
हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो विज्ञान को कम मानते थे। उनके लिए विज्ञान था ईश्वर की रचना को समझने का तरीका, और आध्यात्मिकता थी उस रचने वाले से जुड़ने का माध्यम।
और वो दिव्य अग्नि की बात, डिवाइन फायर।
हाँ, वो मानते थे कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और कुछ महान करने की क्षमता की एक चिंगारी होती है, एक दिव्य अग्नि।
और जीवन का उद्देश्य है उस अग्नि को पंख देना।
बिल्कुल, ज्ञान, कड़ी मेहनत और सेवा के पंख लगाकर उसे उड़ान देना। शायद यहीं से किताब का शीर्षक भी आया, अग्नि की उड़ान।
उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती थी इतना कुछ करने की, ये सब सोचने की?
मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रेरणा थी देशभक्ति, एक मजबूत, आत्मनिर्भर, सम्मानित भारत का सपना।
टेक्नोलॉजी के जरिए भारत की क्षमता को अनलॉक करना।
हाँ, उनका वो बचपन का उड़ने का सपना, वो अब देश को उड़ाने के सपने में बदल गया था। व्यक्तिगत लाभ, नाम, शोहरत, ये चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती थीं। सेवा भाव ही सबसे ऊपर था।
और मुश्किलें, असफलताएं, जैसे पायलट बनने में नाकामी, SLV-3 की पहली विफलता, इनसे कैसे निपटते थे?
उनका नजरिया बड़ा साफ था। असफलता अंत नहीं है, वो सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। असफलता का प्रबंधन करो, मैनेज फेलियर, ये वो कहते थे।
SLV-3 के बाद उन्होंने किसी पर दोष नहीं डाला।
नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया कि गलती कहाँ हुई, और उनका जो आध्यात्मिक झुकाव था वो भी मदद करता था। वो मुश्किलों को खुद को बेहतर बनाने का, आत्मज्ञान का एक मौका मानते थे।
और उनकी लीडरशिप स्टाइल, असफलता खुद झेलना, सफलता टीम को देना।
हाँ, ये आज के लीडर्स के लिए बहुत बड़ा सबक है। वो मानते थे कि लीडर का काम है टीम को सक्षम बनाना, उन पर भरोसा करना। इसी भरोसे ने उनकी टीमों को वो हौसला दिया कि वो बड़े मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकें।
अगर हम उनके जीवन के तीन सबसे अहम निर्णायक मोड़ चुने, तो वो कौन से होंगे?
मुश्किल सवाल है, पर कोशिश करती हूँ। पहला तो मेरे ख्याल से वही बचपन वाला किस्सा, समुद्र तट पर।
टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यावड़ाला।
हाँ, सीगल पक्षियों को देखकर उड़ान का सिद्धांत समझना। उसने न सिर्फ उनके मन में विज्ञान और एरोनॉटिक्स के लिए जुनून जगाला, बल्कि ये भी सिखाया कि सीखना सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभव में है। उसने जिंदगी की दिशा तय कर दी।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा वो पायलट बनने का सपना टूटना, और उसके ठीक बाद ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद से मिलना।
हाँ, ये वाकई एक बड़ा मोड़ था।
बिल्कुल, एक व्यक्तिगत निराशा को उन्होंने एक राष्ट्रीय मिशन में बदल दिया, अपनी नियति को स्वीकारा और विज्ञान के रास्ते देश सेवा को चुना। ये आत्मखोज का, अपने उद्देश्य को फिर से समझने का क्षण था।
और तीसरा?
तीसरा मैं कहूंगी SLV-3 प्रोजेक्ट, खासकर वो दो घटनाएं, पहली विनाशकारी असफलता 1979 में, और फिर एक साल बाद उसी टीम के साथ शानदार सफलता 1980 में।
ये उनकी लीडरशिप की परीक्षा थी।
हाँ, उनके नेतृत्व की, तकनीकी काबिलियत की और हार न मानने वाले जज्बे की असली परीक्षा थी। प्रोफेसर धवन से जो सबक सीखा था वो यहाँ काम आया। इस सफलता ने उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर स्थापित किया जिस पर देश भरोसा कर सकता था। इसने आगे मिसाइल प्रोग्राम जैसे बड़े कामों के लिए रास्ता तैयार किया।
हाँ, ये तीनों मोड उनकी कहानी को सही मायनों में दर्शाते हैं। अब अगर हम आज के नजरिए से देखें, डॉक्टर कलाम के जीवन से, उनकी किताब से, हम क्या मानवीय सबक सीख सकते हैं आज के लोगों के लिए?
सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक तो यही है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है ये मायने नहीं रखता। आप बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें हासिल भी कर सकते हैं।
रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन,
बिल्कुल। लेकिन साथ ही सफलता मिलने पर भी अपनी जड़ों को, अपने मूल्यों को नहीं भूलना है, विनम्र रहना है।
दूसरा सबक, असफलता से डरना नहीं है।
हाँ, बिल्कुल नहीं, वो अंत नहीं है, वो एक शिक्षक है। SLV-3 का उदाहरण हमारे सामने है, कैसे विफलता का विश्लेषण करके उसे सफलता में बदला। आज की दुनिया में जहां रिस्क लेने की इतनी बात होती है, ये बहुत जरूरी है।
तीसरा, सच्ची लीडरशिप वो पद से नहीं आती,
वो सेवा भाव से आती है। टीम को साथ लेकर चलना, उन्हें प्रेरित करना, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहना और कामयाबी का श्रेय उन्हें देना, ये कलाम साहब की लीडरशिप का सार था।
और चौथा, एक स्पष्ट नजरिया, एक विजन का होना।
हाँ, एक बड़ा निस्वार्थ सपना। उनका सपना था एक तकनीकी रूप से मजबूत भारत का। यही विजन उनकी और उनकी टीमों की सबसे बड़ी ताकत थी।
और अंत में शायद ये कि तर्क और आस्था, विज्ञान और आध्यात्मिकता, ये साथ चल सकते हैं।
हाँ, वो एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, जीवन को संतुलन और नैतिक आधार दे सकते हैं।
आज के समय में जब इतनी उथल पुथल है, उनकी बातें कितनी प्रासंगिक लगती हैं।
बहुत ज्यादा। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की निष्ठा और मेहनत पूरे देश की प्रगति में योगदान दे सकती है।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम आदमी की भलाई के लिए हो, ये सोच तो आज और भी जरूरी हो गई है AI वगैरह के दौर में।
बिल्कुल। और भारत जैसे विविधता वाले देश में सबको साथ लेकर कैसे चलना है, साझा मूल्यों पर कैसे ध्यान देना है, ये भी हम उनसे सीख सकते हैं।
और शायद सबसे बड़ी बात, आज जब कई बार निराशा हावी होने लगती है, तब डॉक्टर कलाम की कहानी उम्मीद जगाती है, प्रेरणा देती है।
हाँ, शिक्षा की, प्रेरणा की, आशा की अहमियत बताती है, और ये भी कि ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का मूल्य हमेशा रहता है।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर तीन खास बातें या निष्कर्ष निकालने हो तो वो क्या होंगे?
ठीक है, पहली बात जो मुझे लगता है, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। सपनों में वाकई बहुत ताकत होती है, पर तभी जब उनके साथ मेहनत और लगन जुड़ जाए।
और कलाम साहब की कहानी ये भी दिखाती है कि बड़ी कामयाबी के साथ भी आप विनम्र रह सकते हैं, मानवीय मूल्यों को पकड़ कर रख सकते हैं, जैसे बहन का त्याग याद रखना, टीम को श्रेय देना।
हाँ, ये दिल को छूने वाली बात है। दूसरी बात, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, कि नई खोज या इनोवेशन के लिए असफलता को स्वीकारना और उससे सीखना, मतलब उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है।
विफलता को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना।
हाँ, बिल्कुल। SLV-3 में यही हुआ, और लीडरशिप का मतलब सिर्फ जीत का जश्न नहीं, हार की जिम्मेदारी लेना भी है। ये असल में ज्यादा असरदार रणनीति है।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जो सबके लिए हो।
मेरे ख्याल से वो दिव्य अग्नि वाली बात, कि हर इंसान के अंदर क्षमता की एक चिंगारी है और जीवन का उद्देश्य है ज्ञान, कर्म और सेवा के पंख लगाकर उस अग्नि को उड़ान देना।
तर्क और विश्वास का संतुलन, ये हमें किसी भी रास्ते पर मजबूती और दिशा दे सकता है।
हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो हम सब पर लागू होता है, चाहे हम कुछ भी करते हों।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।